एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति के एक छिपे हुए कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सदियों से हम स्कूल में सीखते आए हैं कि दुनिया सीधी रेखाओं, गोलों और वो चौकोर डब्बों से बनी है।
बिल्कुल,
पर जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें उबड़ खाबड़ पहाड़, टेढ़ी मेढ़ी नदियां और अजीब से आकार के बादल दिखते हैं।
बिल्कुल, तो सवाल ये उठता है कि इस असली बिखरी हुई दुनिया की भाषा क्या है, इसे गणित में कैसे समझा जाए।
हाँ,
आज हम इसी रहस्यमयी भाषा को सीखेंगे केनेथ फाल्कर की किताब फ्रैक्टल्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के जरिए।
अच्छा,
यही किताब हमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाती है।
और ये सिर्फ गणित की बात नहीं है, है ना? मुझे लगता है जब लोग इसे समझ जाएंगे तो उन्हें पेड़ों की डालियों से लेकर अपनी धमनियों तक हर जगह एक छिपा हुआ पैटर्न नजर आने लगेगा।
सही कहा।
तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव लगाते हैं।
हाँ, पर शुरू करने से पहले लेखक को जानना जरूरी है।
जरूर।
केनेथ फॉल्कनर कोई आम लेखक नहीं है जो किसी विषय पर बस रिपोर्ट कर रहे हों। वो एक तरह से फ्रैक्टल ज्यामिति के मुख्य वास्तुकारों में से एक है।
जिन लोगों ने इस पूरी फील्ड को खड़ा किया है।
हाँ बिल्कुल।
अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे हम संगीत के बारे में किसी आलोचक से नहीं बल्कि सीधे किसी महान संगीतकार से ही सीख रहे हों।
एकदम सही। इसका मतलब है कि वो हमें सिर्फ तथ्य नहीं बताएंगी बल्कि ये भी समझाएंगी कि कौन सा विचार क्यों जरूरी है और उसके पीछे की सोच क्या थी। उनके एक बहुत एडवांस्ड किताब इस विषय पर गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, इसलिए जब वो एक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखती हैं तो वो उस गहरे ज्ञान का निचोड़ होता है।
वो जानती हैं कि शोर में से सिग्नल को कैसे अलग करना है।
बिल्कुल।
तो किताब का मुख्य आइडिया क्या है? ये किस बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है?
देखिए, किताब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। हमारी दुनिया कैसी दिखती है? यूक्लिड की ज्यामिति जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो इंसानों की बनाई चीजों जैसे कि इमारतों और बक्सों के लिए एकदम सही है,
ठीक है।
लेकिन प्रकृति की दुनिया तो खुरदुरी है, टेढ़ी मेढ़ी है।
हाँ,
यह किताब इसी संगठित खुरदुरेपन को समझने के लिए एक नई गणितीय भाषा पेश करती है जिसे फ्रैक्टल ज्यामिति कहते हैं।
और ये सिर्फ देखने में खुरदरापन नहीं है, इसे नापने में भी दिक्कत आती है ना? मैंने कोस्टलाइन पैराडॉक्स के बारे में कुछ सुना है।
हाँ, और किताब वहीं से शुरू होती है। ये एक जबरदस्त पहेली है। मान लीजिए आपको ब्रिटेन के समुद्र तट की लंबाई नापनी है।
ठीक है।
अगर आप सैटेलाइट इमेज से मान लीजिए 100 किलोमीटर के स्केल से नापेंगे तो एक जवाब मिलेगा,
ठीक है, ये तो सीधा सा लगता है।
लेकिन अब आप 1 किलोमीटर का पैमाना लेकर चलें, अब आप उन छोटी छोटी खाड़ियों और मोड़ों को भी नाप पाएंगे।
जिन्हें सैटेलाइट ने नजरअंदाज कर दिया था।
सही कहा। तो लंबाई बढ़ जाएगी। अब सोचिए 1 मीटर का डंडा लेकर नापें तो लंबाई और बढ़ जाएगी।
एक मिनट, ये बात मेरे समझ नहीं आई। लंबाई तो लंबाई होती है, वो हमारे नापने के तरीके पर कैसे निर्भर कर सकती है? अगर मैं अपने घर से दुकान तक की दूरी चाहे इंच टेप से नापूं या लेजर से, दूरी तो वही रहेगी ना?
हाँ, पर समुद्र तट अलग है।
वो कैसे?
यही तो पैराडॉक्स है। समुद्र तट जैसी खुरदुरी चीज के लिए लंबाई का कोई एक निश्चित मतलब है ही नहीं। पैमाना जितना छोटा होगा,
लंबाई उतनी ही अनंत की ओर बढ़ती जाएगी।
बिल्कुल। यहीं पर फ्रैक्टल ज्यामिति के जनक बेनोइट मेंडेलब्रॉट का मशहूर कथन आता है, बादल गोले नहीं होते, पहाड़ शंकु नहीं होते और बिजली सीधी रेखा में नहीं चलती।
हमारी पुरानी ज्यामिति प्रकृति को समझाने में फेल हो जाती है।
हाँ,
तो फिर गणितज्ञों ने क्या किया? क्या उन्होंने इसे एक अनसुलझी पहेली मानकर छोड़ दिया या कोई नया तरीका खोजा?
उन्होंने खोजा और शुरुआत में जो चीजें मिलीं वो इतनी अजीब थीं कि 19वीं सदी के गणितज्ञों ने उन्हें गणितीय दैत्य या पैथोलॉजिकल कर्व्स का नाम दिया।
गणितीय दैत्य?
हाँ, उन्हें लगा कि ये गणित के नियम तोड़ रही हैं।
ये तो सुनने में ही दिलचस्प लगता है। कोई उदाहरण है?
सबसे क्लासिक उदाहरण है कॉक स्नोफ्लेक।
कॉक स्नोफ्लेक?
इसे बनाने का नियम बहुत सरल है। एक सीधी लाइन लीजिए, उसके बीच का तिहाई हिस्सा हटाइए और उसकी जगह एक त्रिकोण के दो साइड लगा दीजिए।
ठीक है।
अब जो 4 छोटी लाइनें बनी हैं उन सब पर यही नियम दोहराइए और इसे अनंत बार करते जाइए।
ठीक है, मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बर्फीले तारे जैसा दिखने लगेगा जिसके किनारे बहुत ज्यादा नक्शादार होंगे।
सही, पर इसकी खासियत ये है कि इसकी बाहरी रेखा की लंबाई अनंत है।
अनंत?
हाँ, अनंत, लेकिन यह एक सीमित छोटे से क्षेत्र को घेरती है।
रुको, ये बात मेरे दिमाग को चकरा रही है। एक बाढ़ जो कभी खत्म नहीं होती, पर उसके अंदर का खेत छोटा सा है, ये कैसे हो सकता है?
है ना अजीब?
ये तो किसी जादू जैसा लगता है, गणित जैसा नहीं।
ये गणित का ही जादू है। एक और उदाहरण है कैंटरसेट।
अच्छा।
एक लाइन लो, बीच का तिहाई हिस्सा हटा दो, बची हुए दो लाइनों से भी बीच का तिहाई हिस्सा हटा दो। ये करते जाओ, आखिर में आपके पास अनंत बिंदु बचते हैं, लेकिन उन सभी की कुल लंबाई शून्य हो जाती है।
क्या?
हाँ, शून्य। इसे पदार्थ के बिना धूल कहा गया है।
अनंत बिंदु जिनकी कुल लंबाई शून्य है, ये तो एक पहेली जैसा लगता है। क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है, या असल दुनिया में इसका कोई मतलब भी है?
शुरुआत में ये दिमागी कसरत ही लगती थी, लेकिन इन दैत्यों ने हमें दो बहुत जरूरी आइडिया दिए जो फ्रैक्टल्स की नींव है।
अच्छा, क्या है वो?
पहला है इटरेशन, यानी एक ही सरल नियम को बार बार दोहराना,
ठीक है, दोहराओ।
और दूसरा है सेल्फ सिमिलैरिटी।
सेल्फ सिमिलैरिटी मतलब जब आप किसी आकृति पर जूम करते हैं तो उसका छोटा सा हिस्सा भी पूरी आकृति जैसा ही दिखता है।
बिल्कुल, जैसे फूल गोभी का एक छोटा टुकड़ा भी पूरे फूल गोभी जैसा दिखता है।
तो इन्हीं आइडियाज से हम कोस्ट लाइन पैराडॉक्स जैसी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लंबाई तो हम नाप नहीं पाए, तो क्या नापें?
बहुत अच्छा सवाल, और यही किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, फ्रैक्टल डायमेंशन। फाल्कनर बताती हैं कि हम खुरदरेपन को नाप सकते हैं।
एक मिनट, डायमेंशन तो मैंने 1D, 2D, 3D ही सुना है। एक रेखा, एक सतह, एक क्यूब, ये फ्रैक्टल डायमेंशन क्या चीज है?
इसे समझने का एक आसान तरीका है। एक सीधी रेखा जो 1D है, उसको अगर आप 3 गुना बड़ा करते हैं तो उसकी लंबाई 3 गुना 1 यानी 3 गुना हो जाती है।
ठीक है।
एक वर्ग 2D को 3 गुना बड़ा करते हैं तो उसका क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाता है। और एक क्यूब जो 3D है, उसे 3 गुना बड़ा करने पर उसका आयतन 3 क्यूब यानी 27 गुना हो जाता है। यहाँ डायमेंशन मतलब 1, 2, 3 वो घात यानी पावर है।
ठीक है, ये समझ आया। तो कोक स्नो फ्लेक का डायमेंशन क्या होगा?
जब गणितज्ञों ने उसके लिए यही समीकरण हल किया तो उसका डायमेंशन आया लगभग 1.26।
1.26, 1.26 डायमेंशन। ये सुनने में अजीब लगता है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज है जो एक रेखा और एक सतह के बीच में कहीं फंसी हुई है।
अच्छा,
बिल्कुल सही पकड़ा। ये संख्या हमें बताती है कि ये आकृति एक सीधी रेखा यानी 1D से ज्यादा जटिल और घुमावदार है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो एक पूरी सतह 2D को भर दे।
तो ये खुरदरेपन का एक सटीक माप है?
हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के समुद्र तट का फ्रैक्टल डायमेंशन लगभग 1.25 है, जबकि नॉर्वे के बहुत ज्यादा कटे फटे तट का डायमेंशन लगभग 1.52 है।
वाओ, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस आकृति के चरित्र के बारे में बता रहा है। ये तो बहुत जबरदस्त बात
है ना?
पर ये आकृतियां बनती कैसे हैं? क्या प्रकृति भी ऐसी नियम दोहराती है?
हाँ, और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है इटरेटेड फंक्शन सिस्टम या IFS।
IFS
ये दिखाता है कि कैसे कुछ बहुत ही सरल नियमों से अपार जटिल आकृतियां बनती हैं। इसका एक मजेदार उदाहरण है खेओस गेम।
खेओस गेम नाम तो बड़ा नाटकीय है।
खेल सरल है, एक त्रिभुज के 3 कोने लीजिए, कहीं भी एक बिंदु से शुरू करिए,
ठीक है।
फिर रैंडमली तीनों में से कोई एक कोना चुनिए और अपने बिंदु को उस कोने की तरफ आधे रास्ते तक ले जाइए।
अच्छा,
अब इस नए बिंदु से यही प्रक्रिया हजारों लाखों बार दोहराइए। आपको क्या लगता है क्या बनेगा?
मुझे लगता है कि पूरी स्क्रीन पर बेतरतीब डॉट्स भर जाएंगे। आखिरकार हम हर बार रैंडम कोना चुन रहे हैं।
ऐसा ही लगता है, पर होता इसका उल्टा है। जादुई रूप से स्क्रीन पर एक सुंदर व्यवस्थित पैटर्न उभर आता है, सेयरपिंस की त्रिभुज।
सच में?
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ऊपर से दिखने वाली अराजकता के अंदर एक गहरी व्यवस्था छिपी हो सकती है।
ये तो अविश्वसनीय है। क्या इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल फिल्मों में भी होता है, जैसे अवतार में जो जंगल दिखाए गए थे?
बिल्कुल।
क्या वो भी ऐसे ही नियमों से उबाए गए थे, ना कि किसी कलाकार ने उन्हें एक एक करके बनाया था?
यही तो इसका जादू है। कलाकार हर पत्ती या पत्थर को डिजाइन नहीं करता, वो बस नियम तय करता है।
कि एक डाल से दो शाखाएं निकलेंगी, हर शाखा पिछली से थोड़ी छोटी होगी।
हाँ, एक खास कोण पर मोड़ेगी वगैरह वगैरह, फिर कंप्यूटर इन सरल नियमों को लाखों बार दोहराकर पूरा का पूरा जंगल उगा देता है।
वाह,
इसका सबसे शानदार उदाहरण है बांसले फर्न, जो सिर्फ 4 सरल गणितीय नियमों से एक असली फर्न जैसा पौधा बना देता है।
सिर्फ 4 नियम? तो आप ये कह रही हैं कि एक असली दिखने वाले फर्न का पूरा जेनेटिक कोड, उसकी पूरी डिजाइन सिर्फ 4 छोटे छोटे गणित के नियमों में समा सकती है?
हाँ,
यह तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य भी किसी बहुत जटिल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि ऐसे ही किसी छोटे सुंदर से नियम में छिपे हों।
और इसी विचार का शिखर है फ्रैक्टल्स का पोस्टर चाइल्ड मैंडेलब्रॉट सेट,
मैंडेलब्रॉट सेट,
या शायद इतिहास की सबसे जटिल गणितीय आकृति है।
हाँ,
और ये जेड जेड स्क्वायर प्लस सी जैसे एक बहुत ही सरल समीकरण से बनती है।
रुको, जेड का स्क्वायर करके सी जोड़ना, ये तो स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। इतनी सरल चीज से अनंत जटिलता कैसे बन सकती है?
यही तो इसका रहस्य है। ये सेट उन सभी पॉइंट्स का एक नक्शा है जिनके लिए ये समीकरण बार बार दोहराने पर अनंत तक नहीं भागता।
अच्छा,
और ये नक्शा अंतहीन रूप से जटिल है। आप इसे जितना जूम करेंगे आपको उतने ही नए और खूबसूरत पैटर्न मिलते जाएंगे,
जो अक्सर मूल आकार से मिलते जुलते होते हैं।
बिल्कुल। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे सबसे सरल नियम अनंत जटिलता पैदा कर सकते हैं।
अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बड़े संदेश क्या हैं? मुझे पहला तो ये समझ आया कि प्रकृति की ज्यामिति अलग है। हमारी स्कूली ज्यामिति इंसानों के लिए है और फ्रैक्टल ज्यामिति प्रकृति के लिए, जैसे कोई फूल गोभी या नदी की शाखाएं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है सरलता से जटिलता का निर्माण, जैसा हमने मैंडेलब्रॉट सेट या बांसले फर्न में देखा।
सही।
ये एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार भी है कि ब्रह्मांड की जटिलता के पीछे शायद बहुत सरल नियम हो सकते हैं।
और तीसरा, डायमेंशन की नई परिभाषा। डायमेंशन सिर्फ 1, 2, 3 नहीं है, बल्कि ये खुरदरेपन का एक पैमाना है। जैसे हिमालय की एक घुमावदार सड़क का फ्रैक्टल डायमेंशन एक सीधे हाईवे से ज्यादा होगा, भले ही दोनों कागज पर 1D रेखाएं हों।
और चौथा, अराजकता में व्यवस्था, केओस गेम की तरह, जो चीजें हमें बिल्कुल बेतरतीब लगती हैं,
जैसे मौसम का मिजाज या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव।
हाँ, उनमें भी अक्सर एक छिपा हुआ फ्रैक्टल ढांचा होता है। फ्रैक्टल्स हमें उस छिपी हुई व्यवस्था को देखने में मदद करते हैं।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। अगर उन्हें अपनी भाषा में कहें तो कौन से होंगे?
मेरे लिए पहला विचार ये है, पारंपरिक ज्यामिति प्रकृति का खराब वर्णन करती है। प्रकृति की ज्यामिति खुरदुरेपन की है। इसका महत्व ये है कि ये हजारों साल पुरानी यूक्लिडियन ज्यामिति को सीधे चुनौती देता है और कहता है कि असल दुनिया को समझने के लिए हमें नए औजारों की जरूरत है।
मेरे लिए दूसरा यादगार विचार ये है, एक फ्रैक्टल का डायमेंशन पूर्णांक होना जरूरी नहीं है, ये उसकी जटिलता का एक सटीक माप है।
हाँ,
ये फ्रैक्टल ज्योमेट्री को सिर्फ एक सुंदर कला से उठाकर एक उपयोगी विज्ञान बनाता है। अब हम जटिलता को नाप सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं
और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे काव्यात्मक है, एक अत्यंत सरल नियम को लगातार दोहराने से अनंत जटिलता और लुभावनी सुंदरता पैदा हो सकती है।
ये फ्रैक्टल्स के पीछे का जादू है।
हाँ, ये बताता है कि रचना का रहस्य शायद बहुत बड़े और जटिल ब्लूप्रिंट में नहीं, बल्कि छोटे और सरल नियमों के दोहराव में छुपा है।
और ये सिर्फ सुंदर विचार नहीं है, इनकी असल जीवन में बहुत गहरे उपयोग हैं। हमने फिल्मों की बात तो की, लेकिन और कहाँ कहाँ ये काम आते हैं?
दवा और जीव विज्ञान में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे फेफड़े और रक्त वाहिकाएं फ्रैक्टल होती हैं।
अच्छा, ऐसा क्यों?
ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सतह क्षेत्र मिल सके, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान या खून का प्रवाह बेहतर हो सके।
वाओ।
आजकल तो डॉक्टर किसी कैंसर ट्यूमर की सीमा के फ्रैक्टल डायमेंशन का विश्लेषण करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक या आक्रामक है।
क्या बात है, मतलब खुरदरा ट्यूमर ज्यादा खतरनाक होता है?
हाँ।
और टेक्नोलॉजी में?
हमारे मोबाइल फोन में लगे छोटे से फ्रैक्टल एंटेना को देखिए, उनका डिजाइन फ्रैक्टल होता है, जिससे वे बहुत छोटे आकार में भी कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं।
अच्छा, पुराने लंबे एंटेना ऐसा नहीं कर पाते थे?
नहीं, और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव भी फ्रैक्टल पैटर्न दिखाते हैं, जो जोखिम का विश्लेषण करने में मदद करते हैं।
पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे रोजमर्रा के नजरिए में आता है। इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि पार्क में टहलना भी एक फ्रैक्टल सफारी जैसा हो जाएगा।
बिल्कुल, आपको पेड़ों की शाखाओं में वही पैटर्न दिखेगा जो एक पत्ती की नसों में है। आप फूल गोभी में सेल्फ सिमिलैरिटी देखेंगी।
आप बादलों के किनारों में वही खुरदरापन देखेंगे जो पहाड़ों में है।
हाँ, आप प्रकृति की डिजाइन भाषा को पहचानने लगेंगी और ये बहुत संतोषजनक अनुभव है।
आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक मेरे लिए यह है कि जो दुनिया हमें अक्सर बेतरतीब, जटिल और अराजक देखती है, उसके पीछे अक्सर एक सरल, सुंदर और गहरी गणितीय व्यवस्था छिपी होती है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की सराहना करने का एक नया तरीका है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कैसे सरल नियमों से जटिलता का जन्म होता है। ये सिर्फ गणित या प्रकृति के लिए ही सच नहीं है, बल्कि ये जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी एक शक्तिशाली विचार है।
कैसे?
शायद बड़ी से बड़ी मुश्किलों के हल भी किसी एक बड़े जटिल समाधान में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार दोहराए जाने वाले सही कदमों में छिपे होते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।